कुछ देर पहले हुई इशिका और अभिमन्यु की बातचीत काफी अच्छी रही। इशिका को जब पता चला कि अभिमन्यु वही लड़का है जो बचपन में उसकी किडनैपिंग के दौरान उसके साथ तहखाने में रहता था और उसने उससे शादी का वादा किया था, तो वो काफी खुश हुई। अभिमन्यु को आज भी वो वादा याद था और वो उससे शादी करना चाहता था। हालांकि इशिका ने जल्दबाजी में फैसला ना लेते हुए अभी अभिमन्यु को शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। अभिमन्यु के जाने के बाद भी इशिका उसके बारे में सोच रही थी। उसकी जिंदगी में काफी सारी तकलीफें थीं, इनमें अभिमन्यु एक राहत बनकर आया था। अभिमन्यु के बारे में जानने की चाहत में इशिका ने जब उसके बारे में सर्च किया तो वो कुछ न्यूज़ रिपोर्ट देखकर दंग रह गई थी। उन रिपोर्ट्स में अभिमन्यु वसुधा के जन्मदिन पर अपनी पत्नी को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। हालांकि न्यूज़ में तस्वीर क्लियर नहीं थी और ना ही इशिका की यादें। इस वजह से इशिका की खुशी पल भर में ही गम में बदल चुकी थी। इशिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कीं। उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। इशिका ने बुझी आवाज़ में कहा, मैंने ये कैसे सोच लिया कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि अभिमन्यु राजवंश जैसा परफेक्ट इंसान मुझसे शादी करना चाहेगा, एक ऐसी लड़की से जो एक जाने माने परिवार की नाजायज बेटी है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और तुम भी बाकी लड़कों की तरह झूठे निकले अभिमन्यु। आई डोंट नो कि अचानक तुम वापस क्यों आए हो और तुम्हारे मन में मेरे लिए क्यों इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, पर एक बात तो साफ है, तुम अपने फायदे के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। मेरी ही गलती है जो मैंने नक्श की बातों को इग्नोर किया, जबकि वो जैसा भी है मेरा अच्छा दोस्त है। इशिका ने गहरी सांस ली और बगैर टाइम की परवाह किए उसने तुरंत नक्श को कॉल लगा लिया था। नक्श राजवंश फैमिली से था और अभिमन्यु उसका चाचा लगता था, ऐसे में वही अभिमन्यु की सच्चाई बता सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब इशिका का कॉल आया तब नक्श राजवंश विला के एक कमरे में गार्डों से घिरा हुआ बैठा था। अभिमन्यु ने उसकी निगरानी का काम पृथ्वी को दिया था। जब नक्श का मोबाइल बजा और उसने देखा कि इशिका का कॉल आ रहा था तो नक्श के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने पृथ्वी की तरफ मोबाइल स्क्रीन की और बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, कहा था ना ज्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे। इशिका की याददाश्त जाने के बाद मैं इकलौता इंसान ऐसा हूं जिस पर वो यकीन करती है। उसे तो अपनी जन्म देने वाली माँ तक की सच्चाई नहीं पता है। नक्श की हरकतें और उसकी बातें पृथ्वी को इरिटेट कर रही थीं। नक्श कॉल रिसीव करने को हुआ तभी पृथ्वी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया था। तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, अपना मुंह बंद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कुछ बोलने के लायक ही ना रहो, पृथ्वी ने नक्श को धमकाया। नक्श कुछ नहीं बोला, बस उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि अगर इशिका के दिमाग में कोई बात आई है तो सच का पता लगाए बिना वो इतनी जल्दी पीछे नहीं हटने वाली। इतनी रात को इशिका बेवजह उसे कॉल नहीं करने वाली थी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही पृथ्वी ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसा कि नक्श ने सोचा था, अगर इशिका को किसी बात पर शक हुआ था तो वो उसका पता लगाकर ही दम लेने वाली थी। नक्श की कॉल ना रिसीव करने पर इशिका ने जब दोबारा कॉल किया तो नक्श ने पृथ्वी की तरफ देखकर प्लेफुल टोन में कहा, चलो देखते हैं कि इशिका कब तक मुझे कॉल करती रहती है। अगर मैंने अब कॉल रिसीव नहीं किया तो उसे यही लगेगा कि मैं सोने चला गया हूँ। सुबह वो दोबारा कॉल करेगी या ऐसा हो सकता है कि मुझे मिलने के लिए राजवंश विला तक चली आए। तब क्या करोगे आप लोग? नक्श का कहना सही था। पृथ्वी ने गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर गंभीर आवाज में कहा, मैं कॉल रिसीव करने जा रहा हूँ। अगर तुमने कोई भी बकवास की तो मुझे बस एक फोन कॉल करने भर की देर होगी। तुम्हारी कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, ऊपर से डेटा भी इतना इनक्रिप्टेड नहीं होगा। एक भी गलत शब्द तुम्हें बैंकक्रप्ट कर सकता है, नक्श राजवंश। पृथ्वी की कही हर बात सही साबित हो सकती थी, ये नक्श अच्छे से जानता था। जहां थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी, वहीं अब वो परेशानी में बदल चुकी थी। नक्श ने धीरे से हामी सिर हिला दिया था। उसके हामी भरते ही पृथ्वी ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से इशिका की आवाज आई। वो काफी बेचैन लग रही थी। उसने नक्श से पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी देर रात को कॉल करने के लिए मैं पहले ही तुम्हें अपोलोजाइज कर देती हूँ, बात इंपॉर्टेंट थी इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। मैं सोया नहीं था, बस कुछ फाइल्स में लगा हुआ था। बोलो क्या पूछना है, नक्श ने शांत लहजे में जवाब दिया। मन ही मन वो जानता था कि उसने सुबह जो आग लगाई है ये उसी का असर होगा जो इशिका इतनी देर रात को खुद को कॉल करने से रोक नहीं पाई। मुझे तुम्हारे चाचू के बारे में जानना है, मैं मिस्टर अभिमन्यु राजवंश की बात कर रही हूँ। नक्श, तुमने बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ लंदन में रहती है। सुबह मिसेस राजवंश भी मुझे अपनी बहू समझ रही थी। क्या तुम मुझे उनकी वाइफ के बारे में कुछ बता सकते हो, इशिका ने भारी आवाज में पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस अभिमन्यु से वो कुछ दिनों पहले ही मिली थी अचानक उसकी पत्नी का जिक्र उसे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा था। नक्श कुछ पल के लिए शांत हो गया। अगर यही सवाल इशिका उससे अकेले में पूछती तो ये उसके पास अच्छा मौका था जब वो इशिका को फिर से हासिल करने के लिए अभिमन्यु की शादी की कोई भी झूठी कहानी सुना सकता था। पर अब बात अलग थी, उसके सामने पृथ्वी खड़ा हुआ था जो उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। इशिका, इस मैटर में बाद में बात करें। एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। और तुम मेरे चाचू के बारे में क्यों पूछ रही हो? लिसन, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करनी है। नक्श ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो बात को टालना चाहता हो। पृथ्वी के होते हुए नक्श इशिका को धड़का नहीं सकता था, पर उसका यह बर्ताव इशिका के मन में और शक पैदा कर सकता था। उसकी ये हरकत पृथ्वी को अच्छे से समझ आ रही थी। ये नहीं सुधरने वाला है, पृथ्वी ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा और एक ही झटके में अपनी रिवॉल्वर निकालकर नक्श के माथे पर लगा दी थी। पृथ्वी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी जो साफ कह रही थी कि अगर अब नक्श ने अभिमन्यु के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो अगले ही पल उसकी लाश वहां होगी। नक्श ने थूक निकला और हड़बड़ाहट भरे स्वर में कहा, इशिका, चाचू की शादी नहीं हुई है। दादी के सामने मुझे वो सब कहना पड़ा। मैंने तुम्हें बताया था कि उन्हें अल्जाइमर है और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा है। नक्श, तुम झूठ बोल रहे हो, इशिका ने सख्ती से कहा। तुम अपनी चाचू को डिफेंड क्यों कर रहे हो? क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया है? यहाँ ये ऑनलाइन न्यूज पोर्टल साफ कह रहा है कि मिस्टर अभिमन्यु राजवंश मैरिड हैं और उन्होंने तुम्हारी दादी के बर्थडे पर अपनी वाइफ को सबके सामने इंट्रोड्यूस भी करवाया था। अब तुम कह रहे हो उनकी शादी नहीं हुई? तुम सुबह नहीं, अब झूठ बोल रहे हो। नक्श अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर इशिका गुस्सा हो गई थी। नक्श के जरिए वो सच कितना भी छुपाने की कोशिश करे, पर इशिका कहीं ना कहीं समझ गई थी। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया था। अगर पृथ्वी ने इस वक्त नक्श के ऊपर बंदूक नहीं तान रखी होती तो वो जोर जोर से हंसता और यही कहता कि अब इशिका के सामने उनका एक झूठ नहीं चलने वाला है। नक्श मुंह से भले ही कुछ न कहे, लेकिन वो पृथ्वी को मुस्कुराते हुए देख रहा था और उसके चेहरे के भाव यही बता रहे थे कि उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद इशिका के सामने सच आ ही गया। वहीं नक्श के कुछ न बोलने पर इशिका चिढ़ गई थी। वो बोली, अब चुप क्यों हो गए? इसलिए कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है? तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नक्श।
इशिका अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उसने कॉल कट किया। राधिका, अभिमन्यु, केशव और दिशांक अपनी तरफ से इशिका को एक नॉर्मल माहौल देने के लिए हर छोटी से बड़ी कोशिश कर रहे थे, पर हर छोटी बात अब इशिका के मन में शक पैदा कर रही थी। वो काफी उलझन में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। तभी राधिका कमरे में आई। राधिका इशिका के पास बैठी और उसके हाथ को सिर से हटाकर प्यार भरे स्वर में बोली, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन लेकर सो जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही राधिका ने इशिका के सिर से हाथ हटाया, उन्होंने इशिका का परेशान चेहरा देखा तो उनके चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए थे। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, मुझे लगा अभिमन्यु के प्रपोजल के बाद तुम खुश होने वाली हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम अपसेट लग रही हो। इज एवरीथिंग फाइन इशिका? सी, अगर तुम मालविका और आदर्श की वजह से परेशान हो तो डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। उन दोनों की वजह से शादी में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। परेशान तो मैं हूँ मिसेस सिंघानिया, और ऐसा लग रहा है कि सब मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। आप सब लोग मेरे और अभिमन्यु की शादी को लेकर एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं, जबकि वो तो पहले से शादीशुदा हैं? अगर उनकी पत्नी आज भी उनके साथ है तो फिर वो मुझसे शादी का वादा कैसे कर सकते हैं, इशिका ने जवाब में कहा। इसी के साथ राधिका समझ गई थी कि सुबह नक्श ने जो किया था उसे इशिका के दिमाग से हटाना इतना भी आसान नहीं था। तुम आराम करो इशिका, हम इस बारे में अभिमन्यु से बाद में बात करेंगे, राधिका ने उसे टालते हुए कहा और फिर उसके सामने फर्स्ट एड बॉक्स रख दिया ताकि इशिका दवाइयां लेकर सो जाए। इशिका के सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसने और सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। उसने सब कुछ वक्त के हाथों छोड़ा और दवाई लेकर लेट गई थी। इशिका को तो नींद आ गई थी, लेकिन राधिका काफी परेशान थी। वो मन ही मन बोली, न जाने ये सब कब ठीक होगा। सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अब सब खत्म सा होता दिख रहा है। इतनी मुश्किल से इशिका के पुराने घाव भरे थे और इसे एक एक्सीडेंट ने उन पुरानी बुरी यादों को फिर से उसके जहन में ताज़ा कर दिया है। अगर इसकी याददाश्त जानी ही थी तो ये किसी अच्छे फेज में भी अटक सकती थी। अपनी कश्मकश में खोई हुई राधिका को भी नींद आ गई थी। दूसरी तरफ एआर एम्पायर्स में बने अभिमान के घर पर अभिमान और आशिका परेशान चेहरे के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। अभिमान आशिका को प्रोटेक्ट तो करना चाहता था और उसके इरादे भी अच्छे थे, लेकिन अनजाने में उसने खतरे को वहां बुला लिया था। अभिमान को भले ही समझने में टाइम लगे, लेकिन आशिका ने तुरंत ही फिगर आउट कर लिया था कि अगर आकाश को आशिका के अभिमान के पास होने का सच पता चल गया है तो वो उसके पीछे जरूर आशिका को ढूंढने आया होगा। अचानक आशिका दौड़ते हुए खिड़की के पास गई तो उसने देखा एक धाड़ी एआर एम्पायर्स के अंदर दाखिल हुई है। आशिका ने जल्दी से खिड़की बंद की और अभिमान की तरफ देखकर कहा, वो आ गया है। यकीन नहीं होता, इतनी कोशिश करने के बाद भी किस्मत ने मुझे उसके सामने लाकर खड़ा ही कर दिया है। आशिका मन ही मन खुद को आकाश के सामने जाने के लिए तैयार करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की तो आशिका को ऐसा लगा जैसे वो अपना फ्यूचर देख रही है, जहां आकाश जबरदस्ती उसे लेकर जा रहा है और उससे शादी कर रहा है। ये ख्याल ही आशिका के अंदर सिहरन पैदा कर रहा था। आशिका की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया था।
अभिमान उसके पास आया। उसने आशिका की आंख से आंसू साफ किए और इंटेंस वॉइस में कहा, तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए ये अभिमान राजवंश हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अभिमान ने इतना ही कहा और फिर आशिका को वहां छोड़कर दौड़ते हुए बाहर जाने लगा। अभिमान राजवंश, आखिर क्या है इस नाम में? दो अलग अलग शख्स हैं, लेकिन इसी नाम ने आज मुझे स्काई जैसे घटिया इंसान से बचाकर रखा है। जैसे किस्मत बार बार उसके सामने लाकर खड़ा करती है, क्या वो मुझे मेरे उस अननोन हस्बैंड से नहीं मिला सकती? आशिका ने गहरी सांस लेकर कहा। न जाने क्यों उसे अभिमान पर इतना यकीन हो चला था कि वो उसे सबसे प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन आशिका उससे ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगाना चाहती थी। अभिमान की आंखों में उसे हमेशा जज्बात नजर आते थे, पर आकाश के साथ उसका जो रिश्ता था, उसके बाद आशिका का अभिमान के आसपास रहना भी उसके लिए सही नहीं था। आशिका का दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। वो यही सोच रही थी कि न जाने इस वक्त नीचे क्या हो रहा होगा, तो वहीं अभिमान दौड़ते हुए नीचे पहुंचा, आशिका के लिए एक बार फिर आकाश से लड़ने के लिए।